नियम सार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 70। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आययाणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोये सौवसाहूणं। नमिऊणजिनं वीरं अनन्तवर्णानदं सनसहावं। वोच्छामीनियमसारं केवली। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियम सार नामक ग्रंथ है। उस पर पद्म प्रभ मलधारी नाम के जो मुनिराज हो गए हैं, उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन दिए हैं और वो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से यहाँ हमारे हाथ में है। इस दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 पर हम आ गए। 4 चार नंबर का पृष्ठ देखो। अभी तक हमने 6 द्रव्य और उसका स्वरूप देख लिया। पहले जीव अधिकार देखा, फिर अजीव अधिकार में अन्य अजीव 5 द्रव्यों की बात की हमने। तो 6 द्रव्य जो हो गए, पहला तो जीव द्रव्य, फिर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनकी भी बात हमने देख ली है। अब इस अधिकार का नाम है शुद्ध भाव अधिकार। तो शुद्ध भाव किसको कहना, तो दो अपेक्षाएं आती हैं। एक तो पाप परिणाम जिसको हम शुभ भाव कहते हैं, भाव यानी परिणाम को भी भाव कहते हैं और स्वभाव को भी भाव कहते हैं। तो पाप परिणाम और पुण्य परिणाम, तो पुण्य परिणाम को हम शुभ भाव कहते हैं क्योंकि उसके कारण पुण्य प्रकृतियां बनती है, इसलिए शुभ भाव को पुण्य कह देते हैं। पुण्य कर्म बनता है यानी उससे मोक्ष नहीं मिलता, वो बंध का कारण है। और जो पाप परिणाम है, अशुभ भाव है, उससे पाप प्रकृतियां बनती है तो उसको पाप कह देते हैं। तो ये शुभ भाव और अशुभ भाव, ये पर्याय की बात चल रही है। ऐसे ही जब जीव पुण्य और पाप का लक्ष्य छोड़कर अपना जो स्वभाव भाव है उसका लक्ष्य करता है तो उसके पुण्य और पाप के भाव उस समय वहाँ उत्पन्न नहीं हो रहे, उसको कहेंगे शुद्ध भाव हुआ, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं। यानी आत्मा का लक्ष्य करना उसको शुद्धोपयोग कहते हैं, उसको भी शुद्ध भाव कहते हैं, पर वो पर्याय वाला शुद्ध भाव। यहाँ जो अधिकार बात है, यहाँ जो शुद्ध भाव की बात है, वो स्वभाव भाव की बात है। यानी स्वभाव हमारा अनादि से शुद्ध ही है और परिणमन यानी अवस्था बदलती रहती है। तो अवस्था में कभी पुण्य हो रहा है, कभी पाप हो रहा है, और जो जीव अपना स्वभाव का लक्ष्य करता है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वो शुद्ध भाव पर्याय में प्रकट हुआ। यहाँ पर्याय वाले शुद्ध भाव की चर्चा नहीं है, स्वभाव भाव वाले शुद्ध भाव की चर्चा है। हाँ, त्रिकाली जो कायम, त्रिकाल कायम वो शुद्ध ही है, तो उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होती है। यानी हम आप जो अभी मनुष्य रूप से उत्पन्न हुए हैं, हम जीव तो जुदे हैं। अब जीव का यहाँ कर्म के साथ भी संयोग हुआ है, शरीर के साथ भी संयोग हुआ, संयोग है, परंतु ये पुद्गल है। हमने देखा ना पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, रूपी है, मूर्तिक है, जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। तो शरीर दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये पुद्गल है, पर देखने वाला कौन है, शरीर नहीं है, मैं जीव हूँ। जो समझ में जो बातें आती है, ज्ञान में जो बातें आती है, वो समझने वाला जानने वाला जीव नाम का द्रव्य है, वो मैं हूँ। और ये शरीर को जानने वाला मैं जुदा हूँ। जहाँ जीव है वहीं पर शरीर है, इसको कहेंगे एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, दोनों सुपर इम्पोज होके रह रहे हैं। इसलिए हमें क्या भूल क्या होती है, लगता क्या है कि यही मैं हूँ, क्योंकि जितने क्षेत्र में ये शरीर की रचना हुई उतने ही क्षेत्र में मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो मैं जुदा हूँ और शरीर जुदा है। ये जुदा कैसे हम पहचान सकते हैं? लक्षण के द्वारा। आपने कोई, मम्मी ने कोई चीज़ बनाई है, शरबत बनाया है, तो हम, आपने टेस्ट किया तो क्या क्या था उसमें? शक्कर थी, थोड़ा सॉल्ट भी था, इलायची भी थी। ये कैसे जाना आपने? लक्षण से जाना। ऐसे यहाँ अनेक चीज़ें हैं। क्या है? पुद्गल भी है, जीव भी है। तो हमें अपने को जानना है। तो जीव तो अरूपी है, अमूर्तिक है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता। तो उसको जानना है तो क्या कहेंगे? तो उसका लक्षण क्या है? तो जानना, 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 ये चैतन्य उसका लक्षण है। तो जहाँ जानने का कार्य हो रहा है वही तो मैं हूँ। इस तरह से अपने को समझना है। अब ये कार्य जो जानना, जानना, ये पर्याय हो रही है, पर ये पर्याय जहाँ होती है वहाँ द्रव्य होता ही है, क्योंकि पर्याय आई कहाँ से? अवस्था किसकी है? तो द्रव्य की है। तो वहाँ द्रव्य होना ही चाहिए। जहाँ पर्याय वहीं पर द्रव्य मौजूद है। परंतु द्रव्य कैसा होता है? त्रिकाली। अब उसमें से हर समय पर्याय 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 चल रही है। परिणमन करना ये द्रव्य का स्वभाव है, यानी उसके कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन होगा, कोई ना कोई अवस्था होगी। जैसे सोना है आपके घर में, तो बिना अवस्था का है कि अवस्था वाला है? अवस्था वाला है। क्यों आपके घर में वो बिस्किट क्या है? नहीं नहीं, हाँ तो वो भी अवस्था है कि नहीं? हाँ। आपने कुछ वो तो कुछ शब्द वापरा था, क्या वापरा था? टुकड़ा टुकड़ा, हाँ। यानी वो भी कुछ अवस्था है ना, जो कोई चौको नहीं होगा, जैसा कुछ होगा। हाँ, वो बिस्किट रहने दो, नहीं तो वो हंडा रह दो सोने का। हाँ तो वो क्या है? वो अवस्था है उसकी। हमें उससे क्या लेना देना? वो हम सोने का नाम होता है तो एकदम आंखें चमक उठती है। ऐसा अपना चैतन्य का नाम लेते तो ऐसा होगा कुछ चैतन्य, हाँ जानते हो। जितनी वैल्यू उसकी लगती है, अरे उसको देखने वाला मैं हूँ, चैतन्य हूँ। सोने की वैल्यू जानी किसने? सोने को जाना किसने? सोने को पता है कि अपनी वैल्यू क्या है? सोने को कुछ पता नहीं, वो तो जड़ है। ये पता चलने वाला जो है, वैल्यू करने वाला तो जीव है, उसको अपनी वैल्यू नहीं है और पुद्गल की वैल्यू करते बैठा है। तो ये जो शुद्ध भाव है, उसका कायम रहने वाला स्वभाव भाव, उसमें से कितनी भी पर्याय क्यों ना निकले, उसका स्वभाव कभी कम नहीं होता। क्योंकि यहीं से केवल ज्ञान भी उत्पन्न होगा। कहाँ से? बाहर से सबको जान जान कर केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। ये अंदर से ज्ञान गुण में से वो पर्याय प्रकट होती है। पर्याय ने अवस्था उसमें से प्रकट होती है। तो फिर भी इतने कोई अनंत काल पहले सिद्ध हुए, अब उनका केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, हर समय नई नई पर्याय हो रही है। तो स्वभाव में से कुछ कम हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा। नहीं, स्वभाव कायम जैसा का वैसा रहता है, उसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अनादि से है, जिसको कहते स्वयं सिद्ध होता है। स्वभाव कभी हीनाधिक नहीं होता, जितना का उतना कायम रहता है, त्रिकाल रहता है। उसमें कोई भी पर्याय क्यों न हो, कैसे भी हीन अवस्था क्यों न हो, स्वभाव तो परिपूर्ण रहता है। स्वभाव स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, और उसमें जो कुछ सब परिणाम वो सब सेल्फ सफिशिएंट है और अमर्यादित होता है। स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं होती, स्वभाव में कोई लिमिट नहीं है। तो जानना हमारा स्वभाव है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होगी कि सामने वाले को ही जानना या वर्तमान को ही जानना, इसी कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिटलेस उसका स्वभाव है, और ऐसा लिमिटलेस ज्ञान जो पर्याय में प्रकट होता है उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। जो हमने देखा ना भगवान का स्वरूप क्या है, तो वीतरागी और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले एक समय में। तो इस स्वभाव भाव की यहाँ चर्चा है, इसको शुद्ध भाव अधिकार कहते हैं। क्योंकि हमें अपनी ही वैल्यू मालूम नहीं है क्या है, तो हमारा ज्ञान अपनी ओर कैसे मुड़ेगा? हमारा ज्ञान इसे जबरदस्ती कहीं लगा नहीं सकते। हमारा ज्ञान यानी उपयोग, जिसको हम कहने ज्ञान यानी अपना ज्ञान, कहाँ लगता है, कहाँ दौड़ता है? जहाँ कुछ अधिकता भाषित हो, कुछ क्यूरियासिटी, अरे क्या हुआ जाने तो सही, ये न्यूज चैनल क्यों चलते इतने, अरे यहाँ जानने के लिए, इधर क्या उधर क्या उधर क्या, अरे इसमें से तो कुछ जानूँ उसमें से जानूँ। परंतु ये हमारे में कितनी वैल्यू यानी कितना चैतन्य चमत्कार भरा है, कितने गुण है, इसका पता नहीं अपने स्वभाव भाव का। इसलिए स्वभाव की ओर उसको जानने की क्यूरियोसिटी उत्सुकता नहीं हुई इसकी, बारंबार बाहर की ओर चला जाता है उपयोग। किसी ने बताया अरे ये प्रॉपर्टी इतने करोड़ों की, अभी करोड़ कुछ कुछ नहीं, अब जो उनकी हो चलती है ना, क्यों आपको मालूम होगा, हमको कुछ मालूम नहीं प्रॉपर्टी में से। तो ये स्वभाव भाव की यहाँ चर्चा चल रही है। देखो हाँ बिल्कुल, दो भिन्न है क्योंकि वो पर्याय है, एक समय की होती है। आपका प्रश्न है जो शुद्ध पर्याय है उसे त्रिकाली द्रव्य भिन्न है ना, शुद्ध 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 पर्याय सिद्धों की शुद्ध ही है, परंतु वो तो समय 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 करके हर समय निकल रही, वो पर्याय है और ये कायमी स्वभाव है। जैसे सोना कायम रहने वाली चीज है, ये उदाहरण के लिए है। वो तो पुद्गल का स्कंध है, वो तो कायम नहीं रहेगा, फिर भी हम समझाने के लिए उसका उदाहरण ले रहे हैं। तो सोना हमारे पीढ़ी कितने 10 पीढ़ी से चल रहा है और हर पीढ़ी ने उसके कोई ना कोई गहने डिजाइन बदल दिया, फिर भी सोना वही का वही कायम है, उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही चल रहा है। अवस्था बदलती है, स्वभाव वैसा का वैसा चलता है, समझ में। यानी पर्याय में वो एक समय की है इसीलिए, और वो पहले नहीं थी अनादिकाल के। अभी महावीर भगवान को इस विशिष्ट समय पर केवल ज्ञान हुआ, उसके पहले वो भी हमारे जैसे संसार में घूम रहे थे, है ना। तो उस समय केवल ज्ञान हुआ तो वो नया हुआ, और स्वभाव कब से था, अनादि से है और अनंत काल तक रहता है, नो बिगिनिंग नो एंड, उसको स्वभाव कहेंगे। उस स्वभाव का हमें अपने स्वभाव का एहसास होना चाहिए, उसका भान होना चाहिए, उस संबंधी क्यूरियोसिटी होगी तो उसको जानकर उसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक उसमें एकाग्र होना का अर्थ क्या है, कॉन्सेंट्रेट होना, अपना ज्ञान उसी को जानने में, जानने वाले को ही अपने ज्ञान के द्वारा जानना है। अभी हम अपने ज्ञान के द्वारा कहाँ जान रहे हैं, बाहर। आप वो ऐसा निकालते ना सेल्फी, सेल्फी का अर्थ क्या होता है, खुद का, पर सेल्फ को पहचाना ही नहीं आज तक। तो सच्चा सेल्फी कब होगा, जब समय दर्शन हो जाएगा तब, तब उसने अपने सेल्फ को पकड़ा अपने पर्याय में, है ना। अभी पर्याय कहाँ पकड़ रही है, बाहर की ओर, ये खुद को जाना ही नहीं और कहता है मैं सेल्फी निकाल रहा, ये तो पुद्गल को वहां उसमें निकाल रहे फोटो में, है ना। उसका अभी चल रहा है ना फैड उसका। देखो यहां हम शुद्ध भाव की बात चल रही है, इसमें क्या बताया उन्होंने गाथा में, ये 38 नंबर की गाथा है, जरा पेज नंबर 3 पर देख लो नीचे, गुजराती में पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ ख्याल में आएगा। देखो, छे बाह्य तत्व जीवादि सर्वे हेय, यहाँ जीवादि बाह्य तत्व कहा। देखो ये 7 तत्व जब कहते हैं तो जीव अजीव, हाँ पुण्य पाप कहेंगे तो 9 हो जाते हैं, और पुण्य पाप को आश्रय बंध में इंक्लूड करेंगे तो 7 हो जाते हैं। बात वही की वही है, 7 कहो या 9 कहो कोई डिफरेंस नहीं है, 9 का भी कथन शास्त्र में आता है, 7 का भी आता है। तो जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। तो 7 तत्वों को कहने की भी 2 अलग अलग पद्धति है। जीव तत्व कहने से शुद्धा, ये शुद्ध भाव है ना, त्रिकाली स्वभाव, उसको जीव तत्व कह सकते हैं, और उसको अगर जीव तत्व कहेंगे तो बाकी सब ये पुद्गल वगैरह वो सब और मेरी अपेक्षा आप सब लोग अजीव तत्व में चले जाएंगे। जो जैसे जो जैन ने उसको क्या कहेंगे हम, अजैन। तो जीव तत्व मेरा जीव तत्व कहना है, मेरा यानी मेरा अपना, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है। भगवान के ज्ञान से आप नहीं जानते हो, आप अपने ज्ञान से जानते हो। आनंद का अनुभव आपको अपने आनंद का अनुभव होगा, भगवान का अनंत आनंद से आप कुछ नहीं समझ रहे, उसका सुख आपको नहीं है। तो हम अपनी अपेक्षा अगर बात करेंगे तो मैं जीव तत्व हूँ, मेरी अपेक्षा अरिहंत सिद्ध सब अजीव तत्व में जाएंगे, द्रव्य में नहीं तत्व में। हाँ ये शॉकिंग है ना, देखो केवल वो उनका अपना है, मैं मेरा अपना है, इसीलिए मेरी अपेक्षा अध्यात्म, देखो अध्यात्म की अपेक्षा अलग होती है और आगम की अपेक्षा अलग होती है। आगम मैंने सभी, देखो देखो इस विश्व में माता कितनी है आपको बोलो, माताएं कितनी है, अनंत मत कहो क्योंकि निगोद को कोई माता नहीं होती, माताएं हम कहने मनुष्य है ना बहुत सारी होती है, ऐसे कहेंगे ना, मनुष्यों की बातें करेंगे। आपकी माता कितनी है पक्का, हाँ नहीं 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 वर्तमान की, इस भाव की, इस भाव की बात करनी है, एक ही है ना, ऐसा कहते हो बाकी क्या माता नहीं है, मेरी माता एक ही हो सकती जिसके उधर से मैंने जन्म लिया। तो वैसे हम सौतेली माँ को भी माँ कहेंगे, सासू को भी माँ कहेंगे और बाकी लोगों को भी माँ जी कह के कहेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? और वो हमारे वो व्याख्यान करने को आते हो कि हे माता भगिनी, तो परंतु माँ किसको कहेंगे? आप किसी भी जीव के लिए माँ एक ही होगी। ऐसे ही मेरे लिए मैं जीव तत्व में अकेला एक हूँ। उस मैं को छोड़ेंगे, उसको मैं जीव तत्व को मैं कहा, उसमें वो पर्याय वाली बातें भी नहीं ली, आश्रय बंध संवर निजरा हर एक को अलग अलग कंपार्टमेंट दिया, उसका अलग अलग स्थान दिया है। तो यहाँ स्वभाव भाव वाला मैं जीव तत्व मैं हूँ, तो मेरा स्वभाव अकेला मेरा ही होगा ना, कि वो स्वभाव अन्य का भी होगा? नहीं होगा। तो उस अपेक्षा से, इसको कहेंगे अध्यात्म की अपेक्षा, अपना अनुभव करना है तो उस समय वो भगवान भी पर हो गए मेरे लिए। वो पर है कि नहीं है? पर है। तो स्व में केवल जीव तत्व रखा तो ये सारे पर में चले जाएंगे। अपेक्षा जिसको कहेंगे, किस अपेक्षा से बात कर रहे, कोई घबराने की चिंता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस विश्व में जो तराजू के पालडे होते हैं ना दो, एक पालडे में रखना अपना स्व स्वभाव और दूसरे पालडे में वो पूरे अनंत जीव, उसमें अरिहंत सिद्ध सब अपने बाल बच्चे सब उसमें रखना, पूरी दुनिया की संपत्ति उसमें रखना, वो धर्म अधर्म आकाश सब उसमें, और फिर अपना पालडा भारी लगे अपने को, उसकी महत्ता अधिक लगे, तो ही अनुभव हो सकता है। मैं अगेंस्ट बाकी पूरा सारा पर में गया, अपने में उठने वाले राग द्वेष के परिणाम भी पर में चले गए। डर लगता है, ये जैन तत्व परिचय पुस्तक है ना, जैन तत्व में लिखा है ऐसा। सोलापुर में हम गए थे, वहाँ 94 में कुछ एक बहुत बड़ा विधान हुआ था, इंद्रध्वज विधान हुआ था, बहुत लोग आए थे वहाँ, 5-6 हजार लोग आए थे, और मैंने वहाँ छड़ाला की क्लास ली थी, ये तत्वों की बात पढ़ा रही थी, तो मैंने वहाँ ये बता दिया तो खलबली मच गई, सब चिल्लाने लगे, कितने वहाँ की भी बहुत से अभ्यास भी महिलाएं बहुत थी, यानी क्लास में जोर जोर से वो सब आपस में हल्ला मच गया, तो सब चले गए हुकुमचंद धारिल कीजिए के पास, ये कैसे ऐसे विद्वान है कि ऐसा कैसा उल्टा पुल्टा सिखा रहे। तो उन्होंने बोला वो बात ठीक कह रहे, बराबर है उनकी बात। क्योंकि अपेक्षा समझ में नहीं आती है ना, तो अंदर से ऐसा लगता है हमारे गुरु हमारे अरिहंत हमारे सिद्ध इतने सभी, हाँ वो मेरी अपेक्षा वो पर है, इसलिए उसको अजीव तत्व, तत्व द्रव्य नहीं तत्व, परंतु यहाँ तो वो भी अपेक्षा नहीं लिए है यहाँ।
मनीषा बहन, आपको अपने आत्मा का अनुभव करना है, अपने आत्मा का आश्रय लेना है, तो अनुभव अपना करना है तो महावीर के आत्मा को आप पास जाएंगे, पार्श्वनाथ के पास या आदिनाथ के पास, अपने स्वयं के ना, तो वो होते हुए भी उनका मुझे कुछ, उनके पास केवल ज्ञान है, मेरे पास तो सादा मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मेरा मति शुद्ध ज्ञान मेरे लिए है और उसी मति शुद्ध ज्ञान से मैं अपने आत्मा का अनुभव करूंगी, इसलिए उनको पर कहा गया।
और वो स्वभाव भाव जो है ना जिसका लक्ष्य करना है वो तो सबका समान है, तो मेरे लिए मेरा ही है, उनके लिए उनका है। हाँ ये बहुत बहुत महत्व की है, बहुत महत्व की है, क्योंकि सात तत्वों का जब तक ऐसा स्पष्टता नहीं भासित होती है अपने ज्ञान में, तब तक हम अपना उपयोग कैसा करेंगे? क्योंकि जब अपना अनुभव करना है, मान लेते तीर्थंकर के समोसरण में बैठे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान की वाणी में अपने आत्मा की बात आ रही है, और आत्मा की बात इतनी अंदर से ऐसा लगता है, अंदर से जिसको कहेंगे उमंग आती है, कि वो वाणी का लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा का लक्ष्य कर देता है, वहां अनुभव हो जाता है, तो उस समय भगवान का भी लक्ष्य छोड़ा के नहीं छोड़ा, तो क्या भगवान का अभिनय किया उसने? अरे पूरी विनय की, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो बार बार वही तो कर रहे हैं। गुरु का भी लक्ष्य छोड़कर हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो हमने गुरु को माना कहेंगे, क्योंकि गुरु की वाणी तभी हमने सफल की, क्योंकि गुरु क्या बताते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करो, अपने आत्मा का लक्ष्य करो। भगवान भी जो ऐसी मुद्रा है भगवान की, इधर उधर देख रहे हैं क्या, कौन आ रहे हैं, कितने भक्त हमको पूजा कर रहे हैं, कौन भक्त पूजा कर रहा है, कौन ने कैसी साड़ी नहीं, कोई नहीं, किसने कितने गहने डाले, क्या देखते रहे भगवान? भगवान तो अपने अंतरंग में है और वो सामने वाले शिष्य को बता रहे हैं, तू भी मेरी ओर मत देख, तू अपनी ओर देख, वो बता रहे हैं, वो उनकी मुख यानी उनकी मुद्रा देखकर हमें पता चलता है, वो तो नासाग्र दृष्टि उनके अंतरंग में स्थिर है। वो कौन आता है किसी को आशीर्वाद देते हुए ऐसा हाथ पर लेके बैठे कि ऐसा हाथ है, समझ में आते हैं ना? तो उनका दर्शन क्यों करते हैं हम? उन्होंने जैसा पर्याय में प्रकट किया केवल ज्ञान, वैसा स्वभाव में से प्रकट हुआ है, और उनका जैसा स्वभाव वैसा ही मेरा है। सुबह उठते ही पहले दर्पण के सामने जाते हैं ना, क्या करते हैं सब? अरे हाँ, क्योंकि वहाँ सुबह उठते उठते हम दर्पण के सामने जाते हैं ना, तो क्या देखते हैं? हाँ, बराबर रहेंगे, ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है। और यहाँ कुछ काला है और दिख रहा है दर्पण में, काला है चेहरे पर, तो दर्पण को पोंछा लगाते हैं, क्या करते हैं? इधर इधर करते हैं। तो वो भगवान दर्पण के समान है और वो हमारा शुद्ध स्वभाव दिखा रहे हैं। देखो एक्सरे में भी हड्डी दिखती है ना, वो ऊपर का स्किन वगैरह कुछ नहीं दिखता। भगवान तो हमें क्या, वो एक्सरे से भी और माइन्यूट है, वो तो हमका शुद्ध आत्मा का दर्शन कराते हैं कि जैसा उन्होंने प्रकट किया वैसा उनका स्वभाव है और मेरा भी स्वभाव वैसा है। यानी भगवान का दर्शन तभी सफल कहते हैं जब हम अपना स्वयं का अनुभव करेंगे, तभी वो सच्चा नमस्कार कहते हैं। वो गाथाएं हैं सब समय सार, बड़े बड़े ग्रंथों में सभी बातें बताई उन्होंने विस्तार से। यहाँ तो हमें अभी बेसिक सात तत्व क्या है उसकी बात चल रही है अपनी। यहाँ जो बात है जीवादि सातों तत्वों को बहिर्तत्व कहा, तो यहाँ पर्याय वाले जीव को, जो मनुष्य है, नारकी है, देव है, ये पर्याय है ना जीव की, अभी हम मनुष्य पर्याय में है, तो इसको यहाँ ये बहिर्तत्व ने ये बाह्य तत्व कहा। हम तो स्वभाव वाले है, ये मनुष्य पर्याय है। अभी मनुष्य पर्याय ने वो शरीर की बात नहीं, जीव की मनुष्य पर्याय, क्योंकि जीव का सोचना, जीव का जो कुछ बिहेवियर है वो मनुष्य जैसा चल रहा है, मनुष्य जैसा सोच रहा है। तीरियन से वो अपने अपने पर्याय के अनुसार सोचते हैं, ऐसे यहाँ शरीर को भूल जाओ, केवल जीव को ले लो, और जीव की अपनी मनुष्य पर्याय, उसका अपना आकार है और उसके अपने जो कुछ भाव होते हैं, जैसे कुटुंब में रहना कहो, एक दूसरे को मदद करना, ये जो भाव होते हैं मनुष्यों के, उस मनुष्य पर्याय की बात करें तो ये पर्याय को बाह्य तत्व कहा है, क्योंकि उतना मेरा स्वभाव नहीं। अभी मैं मनुष्य हूं तो इसके पहले मेरा अस्तित्व, मेरे एग्जिस्टेंस था कि नहीं था? उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले। अब यहां मरण हो जाएगा, मरण हो जाएगा ना, हम कहते मनुष्य मर गया, पर मनुष्य वो पर्याय है, वो पर्याय पलट गई, इस देह का वियोग हुआ, जिसका संयोग है उसका वियोग हुआ, तो आगामी दूसरा देह धारण करेगा। अभी हम सुबह दो है ना, संघातन और परिशातन, क्या क्या बातें चलती रहती है। इन्हें जीव शरीर के परमाणु ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है, परंतु जीव तो उससे जुदा है, ये सारा शरीर यहाँ छोड़कर जीव चला जाता है, यहाँ से अन्यत्र जाके दूसरा शरीर धारण कर रहा है। ये ऐसा हमने अनादि से आज तक कितने अनंतो 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 भव किए हैं, और हर बार वो जन्म मरण और उस भव में कुछ न कुछ दुख ही दुख, क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ति अतीन्द्रिय अनुभव नहीं होता है तब तक वो दुखी ही है, और उसका इतना दुखी है कि उसको अपने दुख की भी पहचान नहीं है। जैसे कोई कोमा में चला गया, कोई सुध ही नहीं है, तो उसके दुखों की उसको पता ही नहीं लग रहा है, इतना वो जिसको कहेंगे ज्यादा दुख हो जाता है। अभी एकेंद्रिय आदि जो पर्याय के जीव है, जिसको कहते वेजिटेरियन, यानी वनस्पति जैसा हो जाता है, तो उसमें कितना दुख होगा, और उस दुख के भी उनको कुछ, उसका रिएक्शन भी नहीं कर सकते, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, उसके लिए कोई उपाय नहीं कर सकते। द्विंद्रियादि जो जीव है वो कुछ डेंजर दिखता है तो भाग तो सकते हैं, थोड़ा उतनी तो उनमें कैपेसिटी है, उतने ही राग द्वेष के भी परिणाम करके वो कुछ उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक इंद्रियों में तो जो है वैसा भोगते रहते, जिसको हम कहते कर्म फल चेतना, हमने देखा था उसको। तो ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें से हमें छूटना है। क्या ऐसा ही जन्म मरण और अनंत काल तक करना है? क्या हमें सिद्ध भगवान जैसा अपने सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है? तो हमें अपने को पहचानना है और कुछ नहीं करना। ये धर्म विरम क्या चीज है? अपने को पहचानना, उसको धर्म कहते हैं। किसी रिचुअल का नाम धर्म नहीं है, कहते हैं सब बाह्य में, क्योंकि दुनिया में चले जाओ तो ये रिचुअल्स को ही धर्म मानते हैं। हम भी बचपन में ऐसे ही मानते थे कि भगवान की पूजा करो, इतना करो, ये व्रत करो, इतना उपवास करो, हो गया धर्म, यात्रा करो कभी कभी। परंतु सच्चा धर्म क्या है? तो जो धारण करता है जीव या प्रत्येक द्रव्य, पुद्गल ने क्या धारण किया है? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उसके धर्म है, उसके गुण है। हमने क्या धारण किया है? चैतन्य है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, तो ये हमारे गुण है, हमारे धर्म है। तो हमारा स्वभाव है वो शुद्ध भाव की यहाँ बात चल रही है। ये इंट्रोडक्शन क्यों बेटा आप आ जाए ना, इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक लिया। अच्छा है आप आया करो जब भी। हाँ आपका ये प्रश्न है जीव किसको कहना, तो जीव द्रव्य जो है अनंत गुणों का पिंड, और वो गुणों में क्या विशेषता है यानी द्रव्य में, वो हर समय परिणमता है, यानी वो पूरा मिलकर जीव द्रव्य हो गया। ये मनुष्य पर्याय भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ जीव द्रव्य है, उससे जुदा नहीं है। परंतु मनुष्य नहीं, वो शरीर के साथ वाला मनुष्य उसकी बात नहीं है, शरीर जुदा है, जीव जुदा है, जीव ही, जीव शब्द एक ही है। हाँ, वो जीव तत्व मैंने कहा था, तत्व तत्व ने केवल स्वभाव भाव, वहाँ तो आश्रय को भी जुदा तत्व कहा, बंध को भी जुदा तत्व कहा, संवर निजर और मोक्ष को भी जुदा तत्व कहा, यानी सिद्ध पर्याय हुई, केवल ज्ञान हुआ, वो पर्याय में हुआ है, वो अभी तक नहीं था और अभी है। और मैं कैसा हूँ, मैं यानी तत्व, मैं तो अनादि से हूँ। इस तरह से जीव द्रव्य कहेंगे तो गुण पर्याय सब कुछ आ गए, और जीव तत्व कहेंगे तो यहाँ जो शुद्ध भाव की बात चल रही है ना, जो स्वभाव भाव, स्वभाव भाव उसकी बात है। ये बारंबार इसकी चर्चा होगी तो आपको ख्याल में आ जाएगा। पहली बार सुनते तो कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि कभी सुना नहीं ना ये बातें। वो जो जैन तत्व परिचय है आपके पास, उसमें सात तत्व वाले लास्ट में सात तो उसके लेटर्स है, चैप्टर्स सात है क्या नौ है मुझे याद नहीं बराबर, तो वो पढ़ना अभी आज घर जाके। तो थोड़ा थोड़ा तत्वों का स्वरूप, उसकी परिभाषा क्या है आपको ख्याल है। जब अपना संडे को होगा तो होगा ही, विस्तार से होगा, परंतु कल इतना उसके शुरुआत हो जाएगी, वो एकदम लास्ट वाले चैप्टर से, उसको साल लगेगा अभी आने में, क्योंकि संडे टू संडे चल रहा है ना। हाँ, इसलिए आपके पास पुस्तक है तो अभी वो चैप्टर्स पढ़ लेना तत्वों की बात, क्योंकि यहाँ वो कायम यानी वो उपयोगी आने वाली चीज है। अभी हमारा तत्वों का यहाँ चलेगा, यहाँ क्या कहा उन्होंने, जीवादि बाह्य तत्व, तो जीव में वो व्यवहार जीव लिया, जीव की पर्याय ली, वो जीव तत्व ने स्वभाव भाव वाले को उसको ये है या नहीं कहा, वो तो उपादेय है, उपादेय ने उसका लक्ष्य करने लायक है। हाँ स्वभाव, उसको शुद्ध भाव कहा यहाँ पर, और जीवादि बहिर्तत्व में, जीवादि में जीव में उसकी पर्याय ने नर नारकादि पर्याय ली, अजीव में सारे अजीव द्रव्य वगैरह सभी ले, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सबको ले लिया, और फिर आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष सभी जो है वो है यह है, क्योंकि वो कुछ तो पर्याय वाले तत्व है, कुछ तो परद्रव्य है, और मैं इनसे सबसे भिन्न हूँ, ये यहाँ कहना चाहते हैं। क्या कहा देखो, ये गुजराती में पढ़ती हूँ, तीन नंबर के पेज पर लास्ट में, छे बाह्य तत्व जीवादि सर्वे हेय, यानी जीवादि सर्व बाह्य तत्व है वो हेय है, यानी उसका लक्ष्य छोड़ने लायक है। आत्मा ग्राह्य छे, अब यहाँ आत्मा किसको कहा, ये जो स्वभाव भाव वाला आत्मा उसको यहाँ आत्मा कहा, क्योंकि पर्यायों को अलग अलग नाम दिए है, आश्रय नाम का जो पर्याय है उसको अलग नाम दिया, बंध तत्व को बंध पर्याय को अलग नाम दिया, संवर निजरा मोक्ष को अलग अलग तत्व में अलग अलग गिना उसको, तो अभी कौन रह गया स्वभाव भाव, तो वो ग्राह्य छे, ग्राह्य छे ग्रहण करने ने लेफ्ट हैंड से के राइट हैंड से, ग्रहण करना का अर्थ होता है जानना, उसी को जानते रहना। जे कर्म थी उत्पन्न गुण पर्याय थी व्यतिरिक्त छे, अभी कर्म से उत्पन्न होने भाव जो हमने कल पढ़ा था कि जो जिसको हम नैमित्तिक भाव कहते हैं, जिसको औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, सौक्षमिक भाव और औदयिक भाव कहते हैं, वहाँ कर्मों में वो अवस्था पाई जाती है, जो जीव अनादि से कर्मों से युक्त है और हर समय कर्मों का उदय ने खिरना चल रहा है और नए कर्मों का बंध भी चल रहा है। तो यहाँ कर्मों की अवस्था के कारण जीव में भाव तो अपने से होते हैं। एक ख्याल में रखना कि कोई भी द्रव्य हो और उसकी कैसी भी अवस्था क्यों न हो, वो स्वयं अपने से होती है। कोई भी परद्रव्य उसकी अवस्था के लिए कारणभूत नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा सुना, हम जो दुखी होते हैं वो हमारे अपने स्वयं के कारण होते हैं, और हमने आज तक परद्रव्य को ही, संयोगों को ही दुख का कारण माना है, और संयोग सुधारने से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा माना है। पहले ये नक्की करना है कि मेरी अवस्था मेरे अपने से होती है। अब यहाँ जीव की अवस्था जीव के अपने से होती है, भले वो औदयिक भाव यानी वो जो मोह राग द्वेष के परिणाम हम कहेंगे अभी, मिथ्यात्व है वो औदयिक भाव है, क्रोधमान माया लोभ वो औदयिक भाव है, तो वहाँ क्रोध का उदय पाया जाता है, क्रोध कर्म का उदय है। यानी जीव यहाँ क्रोध करता है, वहाँ क्रोध कर्म हाजिर है, तो उसको निमित्त कहते हैं, पर उसने जबरदस्ती जीव को क्रोध नहीं कराया है। जीवों की यही मान्यता है कि कर्म का उदय आया ना इसलिए हमें क्रोध हुआ, कर्म का उदय आया इसलिए हमको रोना आया, कर्म का उदय आया इसलिए पंखा घूम रहा है। ऐसा है क्या? पंखा घूम रहा है वो पुद्गल की अपनी योग्यता से करके हम अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो हमारा साता असाता है। वो पंखा हमारे साता असाता के लिए नहीं आया है। कल बात आई थी ना, वो पानी उड़ा वो बस का, वो उसका पुद्गल का परिणाम उसके कारण है। हमने उसका लक्ष्य करके बुरा सूचने वो प्रतिकूल माना तो हमारे असाता का उदय कहेंगे। ख्याल में आई बात? केवल पानी गिरता है पर इसलिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, साता असाता नहीं है। अभी बारिश नहीं थी बहुत दिन से और बारिश आई, अभी वो किसानों को सब कीचड़ हो गया सब जगह, तो अच्छा माना का बुरा माना उन्होंने? अरे जब नहीं थी बारिश हाँ तब अच्छा माना कि नहीं, और अभी बहुत ज्यादा हो गई तो ये हमारी मान्यता के अनुसार हम उसका अर्थ लगाते हैं।
अब वो ऐसा
नहीं है, ये सब हमारी कल्पना है। वो कैसी कल्पना है? क्योंकि हमने क्यों सोचा प्रमाण सर है, मैं मनुष्य हूँ मानकर ये जब बातें सोचते हैं, अब हम जीव मानकर सोचो, जीव ने क्या किया? केवल जाना। तो जीव के लिए अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है? जीव के लिए लाल अच्छा है कि पीला अच्छा है, क्या अच्छा है? वो तो पुद्गल का परिणाम है, उसमें जीव ने अच्छा बुरा मान लिया है कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये ग्रीन कलर अच्छा है, ये पीला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रेड कलर या ऐसा ही नहीं। ये क्या है? हमने कल्पना की है। जीव केवल जानता है, अरे पुद्गल है उसका परिणाम है, वर्णगुण पुद्गल है और उसके पर्याय उसके अपने से होती है, और जीव ने उसमें यह इष्ट अनिष्ट मान के रखा है, और ये इष्ट अनिष्ट मानने के अलावा इसने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया है। उसकी भूल कहाँ हो रही है? ये जानने वाला मैं हूं, परंतु ये इष्ट अनिष्ट उसने मानकर वो मेरा स्वरूप है ऐसा समझ लिया। ये भी पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, उसमें भी पुण्य तक ही अपने को सीमित रखा। क्यों पुण्य अच्छा है बोलो? साता दिया यानी देखो बहुत अच्छा, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, इसीलिए पुण्य करता है जीव। साता यानी अनुकूलता, अनुकूलता क्यों होती है? पुण्य के उदय से होती है। उदय से ने पुराना पुण्य कर्म बांधा है तो उसके उदय से साता मिलती है, अनुकूलता मिलती है। इन्हें पुण्य कर्म बांधा ना कौन से शुभ भाव ने, उसको भी पुण्य कहते हैं। यानी वो पुण्य बंधा है ना, बंधा यानी कर्म है, शुभ भाव से बंधा है, तो बंध को अच्छा माना कि नहीं अपने? और कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए कोई नहीं कर रहा है, मुंह से कहता है मोक्ष अच्छा है, परंतु जिसको वो संयोगों में गलगली हो रही है और उसके लिए पुण्य कर रहा है, बंध करना चाहता है बंध, तो बंध की चाह ये सात तत्वों की उल्टी मान्यता है, क्योंकि हमने उसको छोड़ने लायक नहीं मानना, करने लायक माना है। ख्याल में आई ना? ये अपने ही अंदर कहीं वो मान्यता में भूल पड़ी हुई है, और हम वहां किस में सुधारना चाहते हैं? प्रवृत्ति में। तो मैं क्या करूं ऐसा प्रश्न आता है, अरे पुण्य करने लायक नहीं है मानना है, मानना है पुण्य तो आता रहेगा। मुनियों को भी पुण्य के परिणाम आते हैं कि नहीं? वो छठे सातवें गुणस्थान वाले झूलने वाले मुनिराज है, उनको भी ये शास्त्र लिखे मुनिराजों ने, तो उनको ये शुभ भाव आया कि नहीं आया? फिर वो करने लायक नहीं मानते हैं, उनको वो जानते हैं कि मैं अपने अंतरंग में स्थिर नहीं रह पाता हूँ, तो ऐसे उनको सहज रूप से भाव आते हैं कि मुझे ये मार्ग मिला है तो बाकी जीव समझे। परंतु वो क्या योग्य समझते हैं? अरे मैं कब अंतरंग में ही लीन हो जाऊं और केवल ज्ञान प्राप्त करूं? परंतु वो अभी उनकी अवस्था नहीं है, वो समझते हैं कि अपनी कमजोरी है, तो ये सहज रूप से ऐसे भाव आते हैं। वो पुण्य और मिथ्या दृष्टि क्या कहते हैं, पुण्य अच्छा है समझकर वो करता है, करने लायक है करके समझता है, ये डिफरेंस है उसमें। और बाकी तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं एक दूसरे को देखने देखकर कर रहे हैं, वो कर रहा है इतना तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। बचपन में हम जाते थे मंदिर में तो दशलक्षण में क्या होता था कि किसी ने उपवास किया हमारे फ्रेंड ने वगैरह, तो उसका वहाँ सत्कार करते थे, बाद में हार डालते थे, उसको मेहंदी लगाते थे कि हम भी माँ के पीछे लगते थे, मैं भी उपवास करूँगी। ये देखा देखी वो करते, मैं क्यों नहीं करूँ, ऐसा होता है कि नहीं? कोई बात नहीं है, आज की तारीख में कर रहे हैं, यानी हम बचपन में कर रहे थे, ये कहते हम आज की तारीख में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यानी ये पुण्य का परिणाम है, इतना तो समझ लो, ख्याल में आती है ना। और सच में हमें जब तत्व ज्ञान का पता चलता है और अपनी आत्मा की बात समझ में आती है, स्वरूप समझ में आता है, तो जिसको प्रकाश पड़ता है हमारे ज्ञान में, यानी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लौकिक में हम कितना कमाते हैं, उसमें कितना खर्चा हुआ, हमें फायदा कितना हुआ, वो सब बराबर हिसाब मालूम है हमको, उसमें तो बराबर चौकन्ना रहते हैं हम, यानी नुकसानी का धंधा कोई नहीं कहना चाहता है। धंधे की बात छोड़ो, जो नहीं कमाता है वो भी अपना कहाँ खर्चा करना कहाँ नहीं करना कौन से फायदे वाली वो बराबर सोचते हैं, और धर्म के नाम पर कितना सोचते हैं, मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं, उसका फल क्या है वो मालूम नहीं है, उसने किया मैंने किया और ऐसे देखा देखी, या किसी ने हमको ऐसा ही बता दिया कि ये करो तो हमने कर लिया, इधर माथा टेको तो हमने टेक लिया। हम बच्चे घर में, हमारे बच्चे हैं 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, वो हम बताते तो बिल्कुल वैसा करते जैसे माँ बाप करते, वैसा वो भी आरती उतारेंगे और क्या क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, और वही पद्धति चलती रहती। बड़े हो गए तो फिर भी उसमें विचार नहीं करते हम ये क्यों कर रहे हैं, ख्याल में ही बात था। देखो 4 नंबर का पेज, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई आज। हेय ने उपादेय तत्वना स्वरूपनु कथनचे, देखो हेय ने उसका लक्ष्य छोड़ना है, छोड़ने लायक, और उपादेय ने उसका लक्ष्य करने लायक है। धर्मी ने, धर्मी उसको कहते हैं जिसने सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव किया है, उसको धर्मी कहते हैं। धर्म वही है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है और वो आत्मा की अनुभूति से शुरुआत होती है, और तब धर्म शुरुआत हुई, तब तक धर्म नहीं हुआ। ये शुभ भाव को धर्म लौकिक में कोई कह देते हैं, पर वो धर्म है ही नहीं है, तो धर्म नहीं है तो क्या है? इधर ऐसा ऐसा होता है ना बोलने में, शुभ भाव धर्म नहीं तो अधर्म कहने इतना यानी ताकत होनी चाहिए अंदर, ख्याल में है बात। तो धर्मी ने यानी सम्यक दृष्टि ने छोड़वा लायक शू छे अने आदरवा लायक शू छे एनु कथन छे। छोड़वा लायक ने हेय और आदरवा लायक ने उपादेय, ये मान्यता में लेनी है बात, पहले में पहले प्रवृत्ति में बाद में छूटेगी, ये मान्यता और प्रवृत्ति समझते हैं? नहीं नहीं समझे। आप तैरना सीखे कि नहीं? नहीं आप नहीं सीखे, आप सीखे तो कैसे शुरुआत में क्या करते थे, वो डब्बा या टायर क्या करते थे, क्या वो बांधते थे, पर जब वो बांध के पानी में उतरते थे नक्की क्या था मन में? नहीं नहीं ये मुझे छोड़ना है। छोड़ना कब? जब एक्सपर्ट हो जाओगे आप, तैरना सीख जाओगे तब छोड़ने लायक है, क्योंकि जो तैरना सीखता है बाद में वो बांध के नहीं तैरता, यानी तब नक्की क्या किया था, ये छोड़ने लायक है। छोड़ा कब? योग्य समय पर। ऐसे यहाँ हमें क्या नक्की करना है, ये पुण्य के परिणाम भी छोड़ने लायक है, अभी छोड़ जाए तो पापी पाप में चले जाएंगे। प्रवृत्ति में नहीं बात करें, मान्यता में लेना है। अभी पुण्य हो रहा है क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो है ये उपादेय की चर्चा कर रही है, वो कौन सा परिणाम है, शुभ है कि शुद्ध है? शुभ है ना, कर रहे हैं और चर्चा में क्या कर रहे हैं, अरे ये छोड़ने लायक है, यानी वो शास्त्र का अभ्यास भी जब छोड़ जब तैयारी हो जाएगी तो इसका भी लक्ष्य छोड़कर अपना उपयोग अंदर ले जाके हम अतीन्द्रिय ने अपना अनुभव करेंगे, तो ये छोड़ने लायक है, हमने नक्की कर दिया है। पर छूटेगा जब? जब हम वो तैयार हो गए और अंदर में अनुभव में उतर जाएंगे तब। ख्याल में आई बात? मान्यता में इसको क्या माना है? यह है छोड़ने लायक है। प्रवृत्ति ने जो हमको छोड़कर जब हम अंतरंग में जाएंगे तो वो प्रवृत्ति, पर अभी अभी जब प्रवृत्ति में छोड़ देंगे, पुण्य को अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा? पाप में, क्योंकि अभी शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ तो कहाँ चले जाएंगे? अभी वो बाण आए ना, नदी का दिखा रहे ना, हाँ, तो वहां वो उतरे हैं सब। वो महाड़ में हुई ना दुर्घटना, तो इतना पूर आया है, तो यहाँ इस पार से उस पार में चला जाना, क्योंकि वो तो ढूंढने का कार्य कर रहे, तो उस नौका में चढ़ गए, तो उस पार जाके उतरना है। किसी को अभी ब्रिज वहां का खलास हो गया, तो किसी को नाव से जाना है, तो नाव में बैठते हैं और फिर उस पार जाके उतरते हैं। यानी उस पार जाने के बाद उतरना है ना, कि नाव में बैठे रहना है? नहीं उतरना है। और बीच मंझधार में उतरेंगे तो क्या होगा? ख्याल में, ये विवेक है, इसको कहेंगे प्रवृत्ति। जब चढ़े थे तो उतरने के लिए चढ़े थे। आप कॉलेज स्कूल में एडमिशन ली थी आपने जब केजी से, और फिर दसवीं पास करके छोड़ दिया आपने, और फिर कॉलेज में गए आप, तो छोड़ना ही था, तो अब गए क्यों? बोलो। बरो नहीं तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलती, समझ में ना? छोड़ना था, गए, पर छोड़कर कॉलेज में गए तब हमने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसके बिना नहीं सीखते तो उसी में रहने लायक भी नहीं है। नहीं तो हमने वो स्कूल में ही पूरी जिंदगी बितानी, ऐसा नहीं है? ख्याल में आती ना बात? तो छोड़ना है तो गए क्यों? तो क्यों उसके बिना तो आगे नहीं जा सकते। इस तरह से यहाँ छोड़ना है, परंतु वो कब छूटेगा? प्रवृत्ति में कब छूटेगा? जब शुद्ध भाव प्रकट होगा तब, अनुभव प्रकट होगा तब की बात है। अब आगे बढ़ते ही देखो, ये धर्मनी पहली सीढ़ी, यानी यहां से धर्म की शुरुआत होती है। धर्मनु पहलू सोपान, सोपान यानी वो पगतिया, सोपान सम्यक दर्शन छे, यानी वहां से धर्म की शुरुआत होती है। तब तक धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई, तो सम्यक दर्शन में उपादेय शू छे अने हेय शू छे, यानी क्या ग्रहण करने लायक है, किसको आदर करना, किसको छोड़ना? तो कहते सम्यक दर्शन छे पर्याय, पर्याय ने अवस्था, मैं आत्मा हूं और मैंने अपना ही लक्ष्य किया, तो सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा प्रकट हुई। कब? जब अतन्द्र आत्मा का अनुभव हुआ उसी समय। पण एना एमा पर्याय नी सन्मुखता कई चीज ऊपर जाए छे। देखो ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ,
स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं है,
समय सार में भी उसको पुद्गल भी कह देते हैं, राग को, क्योंकि हमें वो शुद्ध अपना जो स्वभाव भाव है उसका लक्ष्य करना है। और अभी तक हमारा लक्ष्य कहाँ है, पर्याय में हमें क्या उत्पन्न होता है, अरे मुझे पूजा के परिणाम हुए, मुझे नौकरी धंधे के परिणाम हुए, मुझे बाहर जाके वो परचेसिंग के परिणाम हुए, ये कहाँ लक्ष्य है पूरा, वो परिणामों पर, परिणामों, और वो मैं हूँ ऐसा मानकर चल रहे हैं, उतना ही मेरा स्वरूप है, मैंने आज क्या क्या किया, मुझे क्या क्या करना है, किसके बारे में सोच रहे हैं, ये जो कोई शुभाशुभ भाव ही उत्पन्न हो रहे हैं। अन्य परद्रव्य की पुद्गल की क्रिया तो हम कर नहीं सकते, कभी हमारे मति के अनुसार इच्छा के अनुसार हो जाते तो हमने किया, कभी अन्यतर हो जाता है तो हमने बहुत ट्राई की परंतु वो हुआ नहीं, ऐसा कहते हैं। जीव में क्या हो रहा है, जीव की पर्याय में क्या हो रहा है, तो उस संबंधी उसके विकल्प चल रहे हैं, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, ये अच्छा ये बुरा है, इतने तक जीव की लिमिट है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, तो ये परद्रव्य कहा ना उसको, ये अपने में ही देखो, यहाँ भेद ज्ञान करना है, स्व और पर का भेद करना है, सात तत्वों के नाम अलग है नहीं, उसका स्वरूप अलग अलग होना चाहिए, इसलिए सात तत्व भी भिन्न भिन्न है। पुण्य पाप के परिणाम है जिसको हम आश्रव कहेंगे यहाँ पर, वो जुदा तत्व है ना, और मैं जुदा तत्व हूँ, तो जुदा तत्व को भी यहाँ परद्रव्य कह दिया, इन सबको परद्रव्य कहा, और अकेले स्वद्रव्य किसको कहेंगे यहाँ पर, वो स्वभाव भाव, कायम रहने वाला स्वभाव भाव, उसको यहाँ स्व में रखेंगे, बाकी सब पर में चला जाएगा, इसको कहेंगे वो अध्यात्म की अपेक्षा। साधारण जो हम द्रव्यों का, पर्यायों का, गुणों का स्वरूप कहते हैं, वो तो आगम अपेक्षा कहते हैं, अध्यात्म ने अभी अपना अनुभव की बात है, उस अपेक्षा से किसको क्या कहते हैं, ये हमको बराबर समझना चाहिए। देखो ये सात तत्वों समूह परद्रव्य, सबको परद्रव्य कहा, अब ये जीव की जो, जीव को भी लिया, कौन सा जीव, बाह्य जीव है ना, वो उसकी मनुष्यादि अवस्थाएं, उतना मैं नहीं हूं, मेरे में वो अवस्था हो रही है पर वो मेरा एग्जिस्टेंस उतना नहीं, मैं तो कायम रहने वाला अनादि अनंत हूं, उसमें मैं स्थापित करना है, इसलिए इसको परद्रव्य कह दिया। वो परद्रव्य नहीं, ये जो परद्रव्य वैसा परद्रव्य नहीं समझना, परंतु उसका लक्ष्य छुड़ाने के लिए वो है ही नहीं मेरे में, ऐसा देखना। जैसे आप लौकिक में भी देखते हो, कोई पेपर में, न्यूज पेपर में अनाउंस कर देता है, अमुक अमुक फला फला मेरा लड़का आज से मेरा नहीं है, उसके साथ जो कोई लेन देन के व्यवहार करेगा मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। पहले में पहले क्या लिखा, मेरा लड़का आज से मेरा नहीं है, तो ये पुण्य पाप के भाव मेरे में ही उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु वो कहते वो उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो पर के लक्ष्य से हो रहे, वो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक हमने उसी को मैं हूं मान लिया है, अब उसको पर में रखेंगे तो स्वभाव का लक्ष्य करेंगे, इसलिए उसको परद्रव्य कह दिया। देखो वास्तव में हेय छे एम नथी कहूं, पाठ में हेय छे पन हेय न कहता उपादेय नथी, इन्हें क्या क्या कहना चाहते हैं, यहाँ तो परद्रव्य कहकर है ये जो कहते छोड़ने लायक है, परंतु परद्रव्य जिसको हम कहेंगे ये माइक है, ये परद्रव्य है, ये पुद्गल है ना, ये परद्रव्य है ना, तो इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, जो तो छूटा ही मेरे से, जीव द्रव्य जुदा है, पुद्गल द्रव्य जुदा है, जीव और पुद्गल कभी एक में खुए ही नहीं है, और कभी पुद्गल जीव में घुसा भी नहीं है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, वो क्या है वो अभी आएगी बात अपनी उसमें संडे को, तो उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, तो प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा है, तो उसको हम क्या त्याग करेंगे, परंतु कहने की पद्धति है ये है ना, उसका लक्ष्य छोड़ना है इसलिए उसको है ये कह देते, हम कहते भी है लौकिक में, आज से हमने इसका त्याग किया, चाय का त्याग किया, बटाटे का त्याग किया, इसका त्याग किया, अरे त्याग किया ने वो खाने का जो भाव था ना उसका त्याग किया, तो हम वस्तु का त्याग कह देते हैं, ख्याल में है ना, ये कथन पद्धति होती है इसी, हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि उपादेय नहीं है, यानी उसके आदर ने लायक नहीं है, ये सब जी सारी जो चीजें है, परद्रव्य है, राग भाव है, या जो मनुष्यादि जो पर्याय है हमारी ही, तो उसका लक्ष्य करने लायक नहीं है, वो आदरने लायक नहीं है, जानने में तो सभी चीजें आ जाएगी, ज्ञान का ज्ञेय सब कुछ है, परंतु उसका आदर करने लायक नहीं है। आदर करने लायक मेरा स्वभाव भाव है, ये उसका अर्थ लेना। शू उपादे नथी जीवादि बहिस्तत्वम। देखो जीवनी वर्तमान पर्याय लिया ना, उसको जीव कहा, और संवर निजरा मोक्ष। देखो ये अज्ञानी को तो अभी प्रकट भी नहीं हुआ है, परंतु वो पर्याय रूप तत्व है, वो जीव से जुदा है, ये उन्हा कहना चाहते हैं। पुण्य पाप आश्रव अने बंध बधा बहिर तत्व छे, यानी वो स्वभाव भाव से बाह्य जुदी चीज है, स्वभाव में वो नहीं है, स्वभाव तो जैसा है वैसा अनादि से है। पर्याय जे छे धर्मनी पर्याय संवर निजरानी पर्याय पण बहिर तत्व छे। देखो जो अपने स्वभाव भाव का लक्ष्य करने से जो समय दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, उसको संवर निजरा कह रहे हैं, तो वो भी पर्याय है, वो भी मेरे में अनादि से नहीं थी, अभी नई नई प्रकट हुई, और मैं उतना नहीं हूँ, मैं तो अनादि का हूँ, इसलिए उसको भी बहिर्तत्व कहा। वो भी आदरने लायक नहीं, आदरने लायक तो स्वभाव भाव है, ख्याल में है ना? केम के अंतस्तत्व में ये चीज पर्याय नथी सूक्ष्म वाच्य। अरे रे, क्योंकि ये तो थोड़ी एडवांस बात है, परंतु जानना तो पड़ेगा, केवल सूक्ष्म है करके, कठिन है कठिन छोड़ के नहीं चलेगी बात, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में कितनी कठिन कठिन बातें हमने सीखी है। वहां पर भी मैं मेरी बात कहती हूँ कि अंग्रेजी मीडियम में, मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, और उस कॉलेज में गए तो सब अंग्रेजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और क्या क्या सब कुछ क्या बोलते थे, सब इधर से चला जाता था, दो महीने तक कुछ पता नहीं चलता था क्या सुन रहे क्या नहीं है, फिर भी डटे रहे ना, कुछ चलते रहे फिर आगे। ऐसा ही कहते हैं, यहाँ की भी कितने ही टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं चलती है, परंतु यह अपने कल्याण की बात है, इसमें अन्य कुछ नहीं। वहां तो कुछ सीखना था, डिग्री हासिल करना था, जो कुछ लौकिक हमारा प्रयोजन था, माँ बाप के लिए करते थे, कहो या कुछ लौकिक अच्छा कहने के लिए करते थे। यहाँ तो अपने भव भवों का अभाव करने की बात है, जो अनंत काल में जो नहीं किया वो करने की बात है, यानी वो कितना इम्पोर्टेंट है। भले कुछ चीजें शुरुआत में नहीं समझ में आती है, परंतु इसमें लगे, क्योंकि ये अपने कल्याण की बात है, इसलिए मुझे क्यों नहीं समझ में आता, इस तरह से वो और जोर करना उसमें। जो कोई आप वो पजल वगैरह होता है ना, तो उसमें कैसा दिमाग लगाते हैं, अरे क्यों नहीं, तो इधर करो, ये उधर करो, वो ट्राई करो, इस तरह से ये जरूर समझ में आवे ऐसी बात है, क्योंकि हम अपने अनुभव से बता रहे। जैसे हम शुरुआत में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था, जो कांजी स्वामी को भी सुनते थे, आहा हा हा समझानू का है, दूसरा कुछ नहीं समझते थे, ये पर्याय की बात क्या होती है, क्या क्या इतनी वो तो, और सब लोग डोलते थे, इतने हजारों की भीड़ होती थी, मगर हम तो कुछ नहीं समझते थे, भले लिख के लेते थे क्या क्या बोल रहे करके, परंतु उसकी गहराई कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि तब तक ये ऐसा तत्वों का स्वरूप वगैरह ऐसा किसी ने हमको, यानी हमने नहीं सीखा था शुरू से ऐसा। तो शुरुआत में ऐसी उलझन होती है, परंतु उसमें घबराने की कोई बात नहीं, इतनी बताना चाहती हूँ मैं बात। देखो देखो सूक्ष्म बात छे लिखा ना, अरे अरे जिंदगी मड़ी छे तो सांभळवू, समझवू तो पड़से ने भाई, जिंदगी चाली जैसे। हमें तो लगता है कि जो छोटी छोटी बच्चे सुनते हैं ना, तो हमें प्रमोद आता है कि हमें तो बहुत लेट मिला ये, 30 साल के बाद कुछ मिला, और आप लोग तो छोटे हाँ तो ऐसा लगता है जब छोटे बच्चे या कम उम्र में मिलता है, उनको तो अच्छा लगता है कि देखो ऐसे करना नहीं हो गया, धवला बिवला तो अभी हम इतने 60 साल के बाद हमने पढ़ा। हाँ देखो जिंदगी मड़े छे तो सांभळवू समझवू तो पड़से ने भाई, जिंदगी चाली जैसे क्या अवतार थे, आहा हा क्या अवतार थे, यानी कहाँ जाके गिरेगा, क्योंकि जैसे परिणाम है वैसा अन्य भव मिलेगा उसको। ये जिंदगी अगर ऐसे गारंटी है क्या कि हम 100 साल जियेंगे या 80 साल जियेंगे, क्या गारंटी है, समझ, क्योंकि ये आयु हमने पूर्व भव में बांधी है, उसमें एक समय की भी वृद्धि होने वाली नहीं है, चाहे किसी अमेरिका का डॉक्टर लाओ या यहाँ का या लंदन का कहीं का भी, जितनी आयु बांधी है बांध के आए उसमें वृद्धि तो होने वाली है, हाँ कटौती हो सकती है सभी बात आई ना वो कदली घाट से, कदली घाट से पर बढ़ोतरी तो होने वाली नहीं है। निश्चित ही है, अभी निश्चित ही ऐसे परिणामों से आयु बांधेगी तो ऐसा होने वाला है। वो सब कुछ उसका निश्चित है, वो अपने परिणामों के अनुसार ही हो रहा है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ कहेंगे उसने मारा इसने किया, वो तो कथन के लिए निमित्त के द्वारा कथन होता है, परंतु जो कुछ होता है, मैंने बोला ना जिस प्रत्येक द्रव्य की जो कोई अवस्था होती है वो अपने से होती है, उसमें दूसरा द्रव्य बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और हम तो दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के ही दुखी होते हैं, है ना? क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या उतार थे, यानी ये मनुष्य बहुत छूट जाए तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो बहुत पुण्य किया, हमने स्वर्ग में जाएंगे, वह स्वर्ग में जाएंगे, पर वहां से एकेंद्रीय में चला जाएगा डायरेक्ट, तो उसकी किसने सोची है? क्योंकि देव में जाता है तो वहां भोगने के परिणाम है कि नहीं है, तो भोगने के परिणाम इटसेल्फ पाप है। गुरुदेव कहते हैं ये जो संयोग मिलते हैं ना अच्छे अच्छे वो तो पुण्य से ही मिले हैं, परंतु संयोग मिले हैं और उसका लक्ष्य करता है वो पाप है, यानी पुण्य का उदय चलता है और नया नया पाप बांधता है, क्योंकि भोगने के तो परिणाम है कि नहीं, और पुण्य भी क्यों कर रहा है कि संयोग मिलाने के लिए करता है, यानी उसके पीछे वो भी पाप का परिणाम है कि मुझे अनुकूलता रहे इसलिए मैं पुण्य करूं। हाँ नहीं नहीं वो तो सामान्य सोचना है, वो जिसको कहेंगे हमें पता नहीं इसलिए हम सोचते हैं, क्योंकि हम लौकिक में चाहते हैं कि हम सुखी रहे, संयोग हमें अच्छे रहे, और ऐसा सोचते हैं इसलिए वो भला सदाचरण से रहते हैं, हम दूसरे को मदद करना वगैरह, ये तो जिसको कहेंगे लौकिक सदाचार है, नैतिक जीवन है। परंतु ये हमारा कायम के लिए, क्योंकि कितना भी पुण्य करो तो ये पुण्य और पाप के परिणाम लौट लौट कर होते ही है। ऐसा कोई पुण्य नहीं, पुण्य पुण्य करता नहीं तो क्या होगा, यहाँ से कोई स्वर्ग में गया तो पहले स्वर्ग वाला पुण्य करके दूसरे स्वर्ग में जाता है, क्या होता है? वो तो नियम से मनुष्य 3 इंच में वापस लौटता है, क्योंकि वहां तो कोई ऐसे हिंसाचार नहीं है, कुछ नहीं है, इतने पाप परिणाम नहीं, सब कुछ अनुकूलता है, अपने आप उपलब्ध है। यहाँ जैसा कुछ मायाचारी करके परिणाम उसने दूसरे के लूट लेना, वैसी तो कुछ वहां बातें नहीं होती है, फिर भी वहां ऐसा क्या परिणाम होते हैं? वो तो भोगने की इच्छा के परिणाम, वो भी तो पाप है। तो ये पुण्य और पाप उलट पुलट होते रहते हैं, संयोग भी उलट पुलट होते हैं, कभी हम पाप करते पुण्य करते तो साता असाता भी उलट पुलट, वो तो करना नियोग के नियम ही है ऐसे। तो ये तो हमारे एक साधारण सोचना हुआ, परंतु ये हमारा अज्ञान है। हमारा भला किसमें है, तो इससे रहित मेरी कौन सी, यानी मेरा स्वरूप क्या है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, और तभी तो और अच्छा। ये समझना इटसेल्फ बहुत महान पुण्य है, इसमें तो ऐसे संयोग मिलेंगे तो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि पुण्य के भी ग्रेडेशन होगी ना अलग अलग है। अभी यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दीत हो।